ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण।
ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं?
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी, वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और पांच तत्व तथा तीन गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे, वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे, वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं।
महाराज जी, इष्ट देव और सतगुरुदेव एक ही हैं या इनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है?
इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। अपुण्यात्माओं आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है, इनके जो वर्तमान में महंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं, ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं, कबीर साहब ने ये बताया, कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे है, धर्मदास जी ने सतलोक देखा वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, जो काशी में स्वयं आए हुए थे कबीर नाम थे, जुल्हा नाम से खुद सतपुरुष है। इसके बाद खाक है, क्या देखा है उन्होंने परमात्मा को, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है। सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए, और ये जितने भी कबीर पंथी हैं इंक्लूडिंग मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं, परमात्मा जिसने बताया दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं बस, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जो काशी में बनारस में धारणक रूप में आया था, जुलाहे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है, वो सतपुरुष है, सतलोक में भी वही है। लेकिन वहां उसके शरीर का वो नर आकार है, वहां पर भी परमात्मा, वहां उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है करोड़ सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा, उसकी रोशनी भी फीकी रह जाए। और यहां जब आते हैं वो तीसरी स्थिति में, वो एक सतगुरु एक संत जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं, जिंदा महात्मा कैसे होते हैं, फक्कड़ फकीर होते हैं वो, वैसे मुसलमानों के अंदर ज्यादा माने जाते हैं, उनके सिर पे काला टोप एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं, वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं बस, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले, धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन यह ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता, लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवश्य बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन ली, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा करती कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहां से हम आए और वहां ये सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा जब तक आंखें नहीं देख लूंगा इतने दिल में कच्चाईपन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं, तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था। जैसे कबीर साहब को थे कवि और गणित गणायक संत मान के, और इनकी फाइल को बंद कर रखा था हमने, इतना एक दुल्हा एक कवि और गणित गणा संत इतना मान के छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी है। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना, जब ये प्रमाण दिखाएगा वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने जो अपना अनुभव बताया उसमें वही प्रमाण, फिर कैसा है भगवान, आप समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा फिर वापस आके बताया। जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुलटी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा, तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए, तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली के परमात्मा यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें, तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चलो इसकी जिज्ञासा बढ़ गई, फिर दोबारा आते हैं, फिर दोबारा गए, तो फिर कहा कि परमात्मा और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चना नहीं रहेगी, देखिएगा। ये है पवित्र कबीर सागर, 11 संपूर्ण भाग सहित खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, कबीर सागर का ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई, ये यहां से प्रकाशित। इसके हम आपको ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का ये अध्याय है, बोध सागर खंड है। इसके प्रश्न नंबर 23 पर ये ब्रैकेट में इनके प्रश्न नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी, तो जिंदा वचन हो धर्मनी जो पूछो वो ही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही, जिंदा नाम ऐ सुन मोरा और जिंदा भेख खोजती हूं ओरा, हम सतगुर कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूं, मैं सतगुरु से यह ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई, सत पुरुष व सतगुरु आही, सत लोक में व सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सत पुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई, सतगुर सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नाही। सतगुर आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन मोहे दर डावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो जी न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र काल के पुत्र हैं श्री वर्मा श्री विष्णु श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान कर पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उसते फिरे दीवाना। परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तुम मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहां भी तुम्हें सुख दूंगा जब तक तुम्हारा जीवन है, भक्ति करोगे तब तक। और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता, तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहां ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा, सच्चा नाम दो अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। तो धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा, तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखे। अब देखो सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही, सतगुरु आ जगत तन धारी, दासा तन धर शब्द पुकारी, काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे, और सत नाम उन वो इधर डावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जावे। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम, बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, यहां 55 पे हे प्रभु, धर्मदास जी कहते हे प्रभु, अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी, सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है कैसा राज है, चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं, धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया, तन ठीका जब पूरा वो आई सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने, जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय आओगा, शरीर छोड़कर जब जागा सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जाकर के। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा, चरण टेक प्रभु बिनु वो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही, एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। परमात्मा गुप्त हो गए, गुप्त भय प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता, एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अतरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन कुमति मुहि लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा, मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहेब के मैं नहीं चीना, अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं, चरणोदक बिन करोन ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा, के आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिन करोन ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा, मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो, देवी से सात लग अन्न नहीं खावा, सात दिन तक कुछ नहीं खाया, भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था ओनली वो पांच नाम का। फिर कहते हैं सातवें दिन प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकलाए, चरण पकड़कर रोया बुरी तरह, धर ही ने श्वास मही निपट अधीरा, पड़े चरण में अक्षीण शरीरा, कमजोर शरीर हो गया था चरणों में गिर गया, कर गह साहेब तभी उठावा, और शीश हाथ दे अंक मिलावा। कहते परमात्मा कबीर जी ना कहे, उस कमजोर हुए सात दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया, कर गह साहेब तही उठावा, शीश हाथ दे अंक मिलावा, अंक माने सीने से, धर्मदास चरणोदक लेना, चरण धोकर पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आसमन कीना। अब फिर भी उसने वही रट लगा दी, 57 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। धर्मदास वचन, हो प्रभु चिंता गण करु मोरा, और पुरुष दर्श देव करु निहोरा, आपके निहोर निकालता हूँ, निहोरा काटू आपके हाथ जोड़ू, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। परमात्मा कहते हैं सतगुरु वचन, कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये हठ का करहु, और मानो शब्द शीश पर धरहु, मैं जो कह रहा हूँ इसने सरोदार्य कर ले, भक्ति कर सतनाम कर, और सतनाम करेगा सार नाम तुझे दूंगा वहीं पहुंच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा डॉक्टरी कर रहा है और कोई नू कहे कि मैं तो जब पढ़ दूंगा, मैंने वो डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो, फिर भी ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी, तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर लगेगा, यानी उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हठ का करहु, मानो शब्द शीश पर धरहु, हमरे गहे पुरुष पे जहा, बिन गहे वहां जा न पाया, मारी शरण गहेगा मेरी शरण में आवेगा तो वहां जा सकता है, मैं सत भक्ति बताऊंगा अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं शीश हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो, धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा, कि मैं आपकी बात मान लूंगा लेकिन जब तक देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तव लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही देखा, जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ तो छिन्न मह होए गत उरसाला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन, कबीर साहब कहते हैं धर्मनी जो ऐसो चित की न्या, और तन तज चलो लोक परवीना, इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। अर्था पहुंचे जहां कीले संसा, जहां सब संसाओं का नाश हो जाता है वहां ले गए। लवन में एक पहुंचे जाई, एक क्षण में वहां पहुंच गए। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहां पहुंच गए और वहां परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्य सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का, और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम, जित देखिए जगमग जल का ही, और देखत छकित भय ही माही। उस जहां देखा उड़ा सुंदरता है सुंदरता, जलमल जलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा है, देखिएगा, द्वारपाल हंस तो रहिया, ताम एक हंस सो अस कहिया। यही हंस ही, ये हंस है संत पुरुष दर्श दे आनो भाई। कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना, परमात्मा का जो मेन गेट है जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहां का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत कट्ठे हो गए जो वहां रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में मोजन थे, सुंदर माला पहनते हैं, हरिये बताओड़े बूंद सी घूमे है, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुन्द्र बूंद में डूब कर मरिया करें जैसे। ऐ मूर्खो, कख पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया, ता मैं एक हंस अस कहिया। एही हंस, हंस है यो, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ और पुरुष दर्श दे आनो भाई। पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा के लाओ। चले लिवाए पुरुष पे, जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले, जजक हंस बहु आए तभी। एक मिनट वो घोड़े भगत आगे, हंस आगे, वहां दो रहते हैं जो मोक्ष प्राप्त प्राणी, वहां रह रहे हैं। घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहां के रहने वाले भक्तों की, जो वहां जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। अद्भुत अंग शोभा, अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहां बताऊं। कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, के बताऊं गुणीय शोभा पर, कुछ एक बताता हूं। रतनमाल ग्रीव शोभत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है देखिएगा, सुशोभित हंसा, रतनमाल की रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और भी नूरी सुंदर माला उनके गले में। जगमग देह हंसन कर ही, उनका शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धर ही, यानी अमर कपड़े हैं वहां के, जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहां के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते, वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहां पृथ्वी पर, गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहां प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहां से ये जल आ रहा। इस गंगा जल को कहीं रख लो, कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने कि वहां का ऐसा जल है, जब वहां से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो एक प्योर प्लेस है सतलोक। तो कहते हैं जगमग दे हंसन कर ही अमर तीर वो शोभा धर ही उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे रवि का करतार का रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूं। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहां पर रहते हैं उनकी माथे की शोभा बताता हूं। माथा भाल देखिए कि मैं कहूं सोडस चंद्र भाल छवि लहू। वो अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है सोला इतना रोशनी है उनके मस्तक की जैसे सोला चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे माथे की वहां के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूं। षोडश चंद्र भाल छवि लहु हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा दे घ्राण घ्राण माने नासिका उनका नाक भी है दे घ्राण और शोभा अतिग्रोहा षोडश रवि हंसन छवि मोहा और दे घ्राण शुभ अमृत सोहा। वहां के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं मनुष्य सदृश हैं उनका नाक गर्दन माथा सारा बता दिया मस्तिष्क और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है वो तो एक रोम कूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो उससे भी अधिक है। लेकिन वहां के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य सदृश है गले में माला पहने कपड़े पहने है नाचे गावे ये बूंद और बिंदु बतावे और कोई ना कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावे ये नकली है सारे। ये देखो प्रमाण जिसने आंखों देखा भगवान को षोडश रवि हंसन छवि मोहा एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। दे घ्राण अशुभ अमृत सोहा देह भी है उनका घ्राण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी लोना रतन थार आरतिम ही सोना यानी रत्नों की थाली भर के और हंसन मगन शब्द मुख उचारा और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा क्रीड़ा विनोद वहां आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था वो उसको साथ लेकर बाकी के संत वहां की आत्मा जो मनुष्य सदृश है हंस सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सुरत हंस के आगे लीना नृत करत चले हंस पर वीणा नाचते गाते चले वहां पर और बिंदु बिंदु के नाचे वो तो मछली इतना घुमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने पुरुष सकल देखत हर्षाने परमात्मा की सकल देख कर चेहरा देख कर हंसे बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा आय है परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे उसकी बहुत सुंदर छवि थी अद्भुत अमित कला तन सोहा परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता वर्णत कौ न पावे अंता एक रोम रवि शशि कोटिसा परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिलाते नख कोटिन विदुम मलन नरवीसा यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा तहा न पहुंचे निरंजन चोरा पुरुष कबीर देखा एक भाई है। धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताए थे वो ही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर भगवान और कबीर जी देखा एक भाई और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई अकमत बड़ा निकम्मा ये तो भगवान ने थे नीचे जा रहे थे और ये कबीर पंथी ने बताओ कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान अड़ंग्यो मठा बठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई है धर्मदास पुन रहे लज्जाई बड़ा शर्मिंदा हो गया, भगवान की अर्पण कितनी बकवाद कर दी, क्या सा निकम्मा दुष्ट हूं मैं, वहां इतना शर्म में गट गया, पानी पानी हो गया कि देखी तो भगवान थे मेरे लिए भटक रहे थे और वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई धर्मदास पुन रहे लजाई, पुरुष दर्श कर आयो तो वहां प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां, अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहां कबीर जी बैठे थे उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, यहां कबीर पुरुष दर्श कर आए तो हुआ वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहां कबीर साहब पहले बैठे थे, यहां कबीर बैठे पुन देखा कला पुरुष तन अचरज पेखा, यहां फिर कबीर साहब को फिर देखा और का अजबुत किन हो भाई वहां मोही प्रतीत ना आई, होय होय देख मैंने कैसा जुलम कर दिया, वहां भगवान पर मन विश्वास ना हुआ कि वहां मुझे विश्वास नहीं आई ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहां तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है एक आम आदमी जैसा और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहां क्यों छुपा दी, अपने आत्मा जैसे एक कोठी के कमरे में कक्ष में 1000 वाट की ट्यूबला घड़ी हो, एक 500 की हो, 60 की हो, 1 0 वाट का भी बल्लभ हो ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगह दुगमग दुगमग हो गया वो कमरा सारा और सब औरों को बंद करके 1 0 का रख ले तो वो तो विद्वान है लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहां पर। ये क्या बता रहा देखिए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं वहां तो इन्होंने छुपा रखा है, सत पुरुष जगदास कहाए, वो परम पुरुष वो सत पुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए, ये तो खुद भगवान है। अर्धाय चरण गहु अति सुखचाए, भाग के वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में कबीर रूप में जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संकचाए बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गौ अति सुखचाए, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको, यह शोभा कस उहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा हे परमात्मा जो आपकी यहां शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहां क्यों छुपा रखी है, आप तो खुद परमात्मा हो और ये नकली नहीं हो, कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे पहले ये क्लियर कर देता हूं। अब ये हम 59 प्रश्न पर पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बोध सागर खंड है इसका। अब यहां आगे, यह शोभा कस उहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा, किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहां कैसे छुपा लिया आपने। अब परमात्मा बताते हैं सतगुरु वचन, धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं तो होए विकल निरंजन राव, यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इस तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योत निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा और कोई मुझे देख नहीं सके क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती, इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। देखो धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव, ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा, और सब जीव तब मोहि लोलावे और उजड़े भौ सब लोक ही जावे, इसका उजड़ जाएगा सारा देश लोक, ताते गुप्त राखों जग भाऊ और शब्द संदेश जीवन समझाऊं, वो शब्द जिससे मोक्ष होगा उस जीवों को बता रहा हूं मैं, और शब्द परख चिन्ह मोए कोई गह प्रतीत घर पहुंचे सोई, जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दर्श पुरुष भेटू चित संसा, अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेताहो करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा, डंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे और डोल के डंके पे बता दे सच्चाई को, तो वहां जब इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहां जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ दिए और ने बोले हे परमात्मा मुझे यही रख लो, वो तो बहुत गंदा लोग है, हे दाता वहां तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यही रख लो। तो परमात्मा ने कहा बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता, तुम यहां से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे, अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम, जिसकी एक सुमरण भी कर लेगा उसको कितनी कीमत हो जाएगी। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते एक सतनाम ऐसा दूंगा श्वास उस श्वास से अधिकारी से लेकर इसका सेवन करेगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी इतनी कीमत है कि यहाँ के एक ब्रह्मांड ने सारे एक में धर दिए, 14 लोक है इस ब्रह्मांड में और 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते इन न तो पासंग रख दे, इनका तो कोई सौदा ही नहीं, और वो 14 लोक एक पालड़े में रख दे तखड़ी के में, और एक में धर दे एक श्वास उस श्वास के सतनाम की कीमत, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिमरण का। और पुण्यात्माओं आप कितने करोगे, दब जाकर वहां जाने योग्य हो गए, आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, कितने खाली हो गए नकली साधनाओं से, इसे खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या बताते हैं देखिएगा, अब तुम बेग चलो संसारा और जीव चेतो करो पुकारा। धर्मदास जी वचन, हे साहेब अब वहां नहीं जाई, ये सुख घर तज कहां झुराई, मुझे इसी सुख ने छोड़कर कहां जाने की को कह रहे हो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमति होए बेहाला। ये परमात्मा मैं जब तक नहीं ज्ञान हुआ था तब तो उस गंध में पड़ा ही था, वो तो काल का लोक है, वहां नहीं जाऊं। वह एक शब्द है धर्मदास जी का, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है, वहां मत भेजो महाराज काल की नगरी है, वो मत भेजो महाराज काल की नगरी है। बहुत रोए परमात्मा का गए, परमात्मा बोले बेटा नो बात बने नहीं, तेरे भाई बहन फंसे पड़े हैं, तो गवाह बनिए मेरा, अरे ऐसे नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ रहूंगा, पल पल मैं तेरी मदद करूंगा, जब तू सतनाम का जाप करता रहेगा और मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पुणात्माओं और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जा सदा सुखी, व जाने के बाद तुम झाखो भी कोई ना इधर को, और चलो सतलोक लो सतनाम। और श्री प्रकाश मुनि दामा खेड़े वाले ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया, और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। अब दिखाता हूँ दामा खेड़ा वालों की थोड़ी सी झलक।
मन लाओ मेरो यार फकीरी में। सुख पाऊं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में।
और ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया, और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहां पर नारियल फोड़ते हैं, और श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब को एक परम संत जाने का इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं सत्संग। ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाचे गाये किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, और नाचे गाये हरी मिले तो कौन दो आगण हो। अब ये जितने भी पंथ हैं, ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह नीम का पौधा, तो हम क्या करते थे, उन पौधों को वहां बहुत ज्यादा उग जाते थे एक स्थान पर, उनसे उनको वहां से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की, तो दूसरे ये कहा करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यू ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था, क्योंकि ये खेत से दूसरे खेत में जाते इतने डेढ़ घंटा लग जाता, उस जड़ा मिट्टी थी नहीं, वह लगाते सूख जाता। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई, अब ये सारे सूखेंगे। इस पूरे एपिसोड में श्री प्रकाश मुनि जी दामाखेड़ा वाले ने और श्री पंथ अर्धनाम जी बनारस लहरतारा वाले ने, श्री मधु परमहंस जी रांजडी वाले ने ये क्या स्पष्ट किया है। ये परमात्मा को भिन्न मानते हैं परम पुरुष को, और कबीर साहब को केवल एक सतगुरु मानते हैं। ये परमात्मा को निराकार मानते हैं, जबकि परमात्मा आपके समक्ष बता दिया कि साकार है, वो स्वयं परमात्मा कबीर जी ही पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम पुरुष है। और दूसरा, ये स्वयं अपने आप को कहते हैं हम ब्रह्म होकर ब्रह्म की खोज करें, वही पारखियों वाले सिद्धांत को दृढ़ किया है कि हम ब्रह्म हैं, यानी जीव भी ब्रह्म है, तो फिर खोज किसकी करें, फिर किस लिए सांग जोड़ रखा है, फिर अगर ये सारा संसार जो दिखाई देता है यही सब कुछ है, तो कबीर साहब ने क्या जरूरत थी सतलोक से आने की और इतना इतना ज्ञान देने की। तो ये पथ भ्रष्ट है, इनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ज्ञान इस दास के पास है। और रह रहकर इस सत्संग को सुनो, बार बार सदग्रंथों को देखो, इनसे बचो और सतलोक आश्रम बरवाला इसार हरियाणा में और अपना कल्याण कराओ। सत्साई।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
नमस्कार सर।
नमस्कार।
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
मेरा नाम प्रदीप दास।
सर कहाँ से आए हैं आप?
मैं नेपाल का रहने वाला हूँ।
सर परमसन सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
जी मैं इससे पहले भक्ति करना होता है वो भी मुझे मालूम नहीं था, और मैं कोई भक्ति नहीं करता था।
सर आप बता रहे हैं आप कंप्लीटली एक नास्तिक व्यक्ति थे, फिर सर परमसन सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया कैसे हुई आपके ऊपर?
ये तो मालिक ने दया बख्शी, और मैं टीचिंग पेशा से आबद्ध हूँ, मैं टीचर हूँ नेपाल का, और उसमें भी मैं साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस मैथ हेल्थ भी पढ़ाते हैं। और साइंस को ऐसा माना जाता है कि भगवान है ये नहीं, और साइंस वाला टीचर जो होता है सो भगवान के पक्ष में उतना वकालत नहीं करता और वो विद्यार्थी का भी नहीं इच्छा होता। तो ऐसे हुआ, पहले मेरे घर से मेरे पिताजी ने जुड़े। इसका कारण था, पिताजी एक धार्मिक आदमी थे और कहीं गुरु शायद नहीं बनाए थे। एक बार बनाए थे, वो मुझे उतना अच्छा से वो उतना नहीं है, मैं छोटा था। तो पिताजी उसके बाद और कुछ में लगते थे। तो वहां मेरा पड़ोस से है एक हरि गोविंद दास नाम का मेरा अंकल होगा पड़ोस में, उनको बैक बोन टूट गया था और डॉक्टर ने इलाज किया, 6 महीने तक रखा, उपचार किया, जो कि काठमांडू के टॉप मोस्ट वहां का हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल बीर हॉस्पिटल, उस समय इलाज करवाया। तो वहां से उनको कोई लाभ नहीं हुआ। 6 महीने जब उसका टाइम था कि 6 महीने आप रेस्ट करना होगा और ठीक हो जाओगे आप, वो बोले थे डॉक्टर। तो 6 महीने को जब बीत गया तो उठे तो पहले से भी ज्यादा पेन, यानी कि कोई सुधार नहीं हुआ। और उनको ससुर जी जो इंजीनियर है यहाँ पे, यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो इंजीनियर जी ने उनको यानी कि अपने दामाद को यहाँ पर लाए और वहां से लाश की तरह लाए थे और यहाँ सत्संग सुने परमात्मा का और परमात्मा से आशीर्वाद लिए और यहीं 3 दिन के दौरान में वो बिल्कुल ठीक हो गए। और जब वो गए घर तो अपना बैग बुक करके, जबकि वहां से आने समय में उसका ऐसे उसका सोया करके लाया, वहां से लाया था। तो वो चमत्कार देख करके वहां का एक आपस में चर्चा हुआ, तो मेरा पिताजी ने भी वो जान लिए थे। और मैं अपने घर से कुछ दूर रहता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ पहाड़ में भोजपुर जिला में, तो मैं उतना अच्छा से नहीं जानते थे। तो फिर यहाँ उस वो प्रभाव से मेरा पिताजी ने यहाँ जुड़ गए, आए देखे। और पिताजी का मैं एक ही लड़का हूँ, तो वो सीधे नहीं मुझको कहा कि तुम ही जाओ तुम ही नाम दान लो, वो नहीं बोले। एक पुस्तक दी छोटा कि इसको पढ़ना, तो मैंने पढ़ा। और मेरे अपने पिताजी पे मैं पूरा विश्वास रखता हूँ, कहा कि वो एकदम क्लियर आदमी है, ऐसे बकवास नहीं लगते हैं, वो मेरा विश्वास था। तो मैं किताब देखे तो मालिक ने प्रेरणा भर दी। तो उसी रोज से मैंने ठीक है एक बार जाऊंगा, और मैं वहां पर दारू मांस ये सब खाते थे, कुछ बुराइयां करते थे। फिर वो खाने वक्त में बुराइयां करने वक्त में इच्छा नहीं होता था कि हम ऐसे करें। तो जैसे ही पिताजी ने वो पुस्तक दी मुझे छोटा सा, तो मैं पढ़ा, तो मैं अपने आप को संकल्प कर लिए ये कि मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को मैंने गुरु मान लिया। बस वहीं से मैंने अपने ऐसे किए कि गुरु जी आपको मैंने गुरु स्वीकार कर लिए और मैं कुछ लेट से आऊंगा। इसलिए मैं लेट से कहा था कि मैं अपने शरीर में ये फोहर जो है, विकार जो है मांस मदिरा, 1 साल तक मैं नहीं पसने दूंगा, यानी कि 1 साल तक मैं पूरा उसको बैंड कर देंगे, इसके बाद स्वच्छ होकर के जाएंगे, ऐसे मेरा इच्छा हुआ। तो बस मैंने वही किया। और उससे भी वहां में अपने परिवार का लड़का लड़की पत्नी वो सब कर करके बोले कि देखो मेरा मन में ऐसा है और इस घर में अब मांस मछली ये सब सब सारा बंद होना चाहिए, तुम लोग क्या करोगे। तो मेरे बच्चा बोला, अमृत नाम है, वो भी 14 साल का है, उस समय उसका 12 साल हुआ था, वो बोला वो मेरा प्यारा है और भी प्यारा है। तो वो बोले कि पापा हम क्या खाएंगे, कहा है कि मैं जब आते थे स्कूल से तो उनको मैं बाजार में लेकर के अंडा खिलाते थे बहुत प्रेम से और मांस भी खिलाते थे। तो बोला हम क्या खाएंगे, तो मैंने कहा कि बेटा तेरा लिए मिठाई दुकान खुला है, तुम वहां कर मिठाई खाना है। तो वो एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि टोटल बच्चा सब मान गए। तो मैं 1 साल तक मैंने अपने आप बना लिया, एक सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, कहे कि पिताजी जो गए थे यहां से तो परमात्मा का फोटो स्टिकर सब वहां टसे थे घर में, तो मैं उनको देख करके और कुछ शर्म भी आता था कि पड़ोस ये ना कह दे कि ये टीचर होकर के विज्ञान का टीचर होकर के ऐसे कर रहा है। तो मैं शर्म के मारे ऐसे अंदर से करते थे परमात्मा जय बंश रामपाल जी महाराज की जय ऐसे बोलते थे। और मैं कहते कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, मालिक आप बुला लीजिए। तो जब 1 साल बीता तो मैं परमात्मा के चरण में आए, मेरे पिता के साथ आए थे, दसवीं का छुट्टी था, उस छुट्टी में आए और बिना किसी का कहे हुए मैं आराम से वहां नामदान ले लिए और इस तरह मैं परमात्मा के चरण में जुड़े।
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला?
देखिए ये तो बहुत आश्चर्य का बात है। जब हम आश्रम आए, आश्रम आने से पहले मेरे साथ चमत्कार हुआ, होने लगा, ये मैं खुद जानता था। कैसे हुआ? मेरे स्कूल में पुस्तक का अभाव था, सरकारी किताब हमें दिया जाता है, तो मैंने राजविराज से पुस्तक लेकर के जाते थे और बस बहुत पतली चलती है उस रूट में, जिन रूट में जा रहा हूं, तो फतेहपुर से जाता था। तो कंचनपुर में जब मैं गया तो जो लास्ट वाली गाड़ी थी बस, वो बस निकल गई थी, उसके कारण मुझको एक दिन वहां लेट होता, एक दिन रुकना पड़ता और 30-32 किलो का भारी था वो बोरा किताब का, पुस्तक का, बच्चे का किताब का। मैंने बहुत हैरान हो गए, हे परमात्मा अब क्या करें, मैं जब काली हे सतगुरु रामपाल जी महाराज अब क्या करें मालिक, ये तो मेरे साथ तो एक दिन का विदा लेना होगा, छुट्टी लेना होगा, ये मेरे घाटा होगा, क्या करें मालिक। आराधना करते थे तो उसके बाद जो गाड़ी था, मैंने गाड़ी में बैठे तो जो गाड़ी मुझको पहले पकड़ने थे, यानी कि वो मैंने वो जो मिस कर गए थे, कुछ किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर अगाड़ी जब जाता हूं मैं उस गाड़ी, जिन गाड़ी से मैं गया था बैक वाली गाड़ी से, तो वो जो पहले वाली गाड़ी जो निकल गए थे वो गाड़ी खड़ी थी रोड में, खुला रोड में, वहां पर कोई काम नहीं था। तो एक गाड़ी भी खाया किया, तो मैंने प्रश्न किए कि ये गाड़ी में क्या है, ये तो अभी उस आगे जान था, तो बोला कि इसका इसका डीजल नहीं है, डीजल लास्ट है। मैंने तभी अपने आप को वो कर लिए कि जो ड्राइवर जो जाते हैं पहाड़ की तरफ वो तो डीजल भर के जाते हैं, तो परमात्मा मेरे लिए वो गाड़ी में क्या किए मालिक जानेंगे। उससे मेरे वो भक्ति करना होता है और भक्ति करना चाहिए, वो दृढ़ मुझमें आ गया, प्रेरणा अंदर से आ गया मुझमें। तो इस तरह वो तो यहां पर नाम दान लेने से पहले मेरे साथ हुआ चमत्कार वो हुआ, और इसके बाद तो चमत्कार तो बहुत है, इतने सारे बताएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहां जब मैं आते थे सत्संग में तो परमात्मा से विनती करते थे कि मेरा घर का सब आदमी जुड़ जाए मालिक के चरण में। फर्स्ट में जब मैं आए यहां आश्रम, उस समय मेरे पत्नी ने बोलती थी कि आप इस उम्र में बाबा जी बन रहे हो, वो बहुत टाइट किया कि आप नहीं जा सकते हो। मैंने कह दिया ये मेरा लास्ट फैसला है, चाहे तुम जे भी कर लो, तुमको जो करना है करो, मैं आश्रम जाऊंगा, अनिवार्य जाऊंगा, और मैं बाबाजी नहीं बनूंगा, वो बाबाजी नहीं बनता है वहां पर, मैं ठीक ठाक बन जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बहुत बाधा दिया, फिर मैं उस बाधा को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किए, छोड़ दिए और चैलेंज के साथ हम आ गए, पिताजी के साथ आ गए यहां पे। यहां से जो गए तो फिर वो अटेंग पटेंग करते थे, तो यहां मालिक से प्रार्थना करते रहते थे कि सब लोग को जुड़ा लीजिए मालिक, तो उसको कहते थे नहीं सुनते थे वो मेरे पत्नी। तो एक दिन मैंने गुरुजी से यहां दर्शन में, जब आए सत्संग में दर्शन करते समय मैंने प्रार्थना की कि हे मालिक इस दास को पत्नी को भी बुला लीजिए मालिक, वो मेरा डिस्टर्ब कर रहा है, उससे ऐसे बोले। तो गुरुजी कहे कि बेटा आ जाएंगे वो, मैं ठीक ठाक हो गया, आ जाएंगे। फिर गए, वो नहीं सुनता था। तो चमत्कार कैसे हुआ उनको यहां आने में, यहां मालिक ने एक रोल के क्या किया, मेरे स्कूल है भोजपुर जिला में और घर है सिरहा जिला में, यानी कि मैं इसमें रहता हूं और 1.5-2 महीने पर कभी कभी घर आ जाता हूं छुट्टी में। तो मेरा मोबाइल बिगड़ा हुआ था, यानी कि उसमें चार्ज नहीं लेते थे वो मोबाइल, तो मोबाइल को अंदर से बैटरी निकाल करके अलग था, बैटरी अलग था, मोबाइल अलग था, खाली पड़ा था मोबाइल, और मेरे अलमारी में थे वहां डेरा में। और मैं सुबह में नित्य नियम कर रहा था, और उस समय जिस समय मेरा मोबाइल बिगड़ा था, मैं उसको अगर फोन करना होता था मैं अपने एचएम के मोबाइल से फोन कर लेते थे। तो एक रोज मैंने उसी अवस्था में, मैं अपने नित्य नियम कर रहे थे सुबह को, तो नित्य नियम करने के बाद यहां घर पर फोन किए, कुछ घंटा के बाद फोन किए, वैसे फोन करते थे बराबर, फोन करते थे सुबह शाम, फोन करते थे, फोन किए तो फोन किए तो मेरी पत्नी ने बोला, वो बोली कि आपने आज तो सारा सत्संग सुना दिया मुझे। मैंने बोला कौन सत्संग? अयो तो आप जो पाठ किए मैं सारा सुना, यहाँ पर आप फोन किए थे, आप वहां फोन लगा दिए और ये सुने। मैं हैरान हो गया, मैं कैसे, तुम क्या कर रहे हो? तो हाँ हाँ, तो मैंने बोला कि वो पार्ट कैसे आ गया यहाँ पर, मैं तो वहाँ बस मोबाइल खराब है, मोबाइल का बैटरी अलग हुआ है और मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं अलग था और मैं पाठ कर रहा था अपना जो था नितिन में कर रहे थे, तो वो कैसे आ गया। वो बोली आपका फोन आया, मैंने फोन उठाया, मोबाइल उठाए, तो मोबाइल उठाए तो मैंने हेलो किया, तो आप जो बोल रहे थे वहां पर वो सारा मैंने सुना। वो मेरा था वो 43-45 मिनट का होता है वो नित्य नियम, वो सारा वो सुना। तभी मैं हैरान हो गया और वहां पर एक स्वास्थ्य कर्मी है, वो मेरा फ्रेंड्स है, वो भी यहां से जुड़े हैं, हम और वो एक ही बार जुड़े हैं, उसका नाम है महेश दास, वो विराटनगर रहने वाला है, विराटनगर का। वो महेश दास को वहां पर मैं बोला कि आपने फोन किए थे मेरे घर में, ऐसे ऐसे किए? नहीं, उनके बुलाया और उनको ये चमत्कार कहा, वो भी हैरान हुए। फिर वहां मेरे घर वाला जो थे, घर जिस घर में रहते थे, वो सभी सुने, वो भी सभी वैसे ही। तो उससे मेरे पत्नी को प्रेरणा जागी, तब मैं घर आया तो बोले पगली तुम कहे तो नहीं जाते हैं, अब क्या करोगे, अब तो जाना होगा, हाँ जाएंगे। फिर आया फिर बीच में उतना ध्यान दे करके वो नहीं करती थी अपने वो जो पूजा पाठ से, और इसमें आने जाने में पैसे खर्च होता है, इसीलिए भी मैं नहीं कर सूंगा, ऐसे ऐसे क्या बोलते थे, वो बोलती थी। फिर उसके साथ आज से 6-7 महीने जेठ आषाढ़ महीने में, आखार महीने, आखार बोलते हैं हम लोग वहां पर, वो आज से 6 महीना पहले उसका शरीर ऑटोमेटिक सूख गया, यानी कि ब्लड विहीन ऑटोमेटिक, कोई वो नहीं था। और उस सारा वहां का जितना थे पड़ोस में लोग सब वो कहने लगा, चीना के मम्मी वहां पर मेरी बेटी का नाम चीना बोलती है, तो चीना मम्मी आप उपचार करवाओ, तो मुझे फोन करता था वहां से घर से, तो मैं कहते कि जाओ उपचार करवाओ, तो ये पैसा खर्च होने के कारण से उपचार नहीं करता, और कहते कि जैसे रखेंगे परमात्मा वैसे रहेंगे, खाली वही सतगुरु रामपाल जी महाराज जो करेंगे वही मैं उपचार नहीं करूंगा। वो अपना अड्डा नहीं छोड़ा, यानी कि अड़िक रहा, पैसा एक पैसा का दवाई नहीं किए। तो आषाढ़ सावन भादो वो 3 महीना के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गई, आज भी सत्संग आई है, एक पैसा को दवाई नहीं दिए, जबकि वहां पर जितना लोग थे उसके शरीर में ब्लड नहीं था, तू मर जाओगे ऐसे बोलते थे, एक पैसा का दवाई नहीं लिए, ये बोलते थे कि मेरा गुरु जी ने जैसे रखेगा, मारेगा तो मारेगा, मैं नहीं खाऊंगा दवाई। वो बिल्कुल ठीक हो गई, उससे उसको प्रेरणा जागी। फिर दूसरा ये हुआ, दूसरा ये तीसरा चमत्कार, यानी कि मेरी पत्नी के साथ फिर दूसरा चमत्कार हुआ भरकर, ये आपको 1.5-2 महीना हो गया। उसका बैक बोन जो है ये रीढ़ की हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी में पेन थी। कैसे पेन था, वो जब सोती थी सुबह वो शाम को, तो सुबह उठने वक्त में उसको बहुत कष्ट होता था और वो रो रो करके उठती थी। कुछ दिन ऐसे चलता रहा, कहा कि वो भक्ति में ध्यान नहीं देने लगा तो मैं भी उसने उतने नहीं करने लगा, तो वो बैक बोन जो पेन थे, पेन उसको जारी था। तो जब मैं स्कूल से आया फिर, तो वो मुझे कहा कि मेरा पेन है क्या करें, तो मैं उसको बोलता था कि उपचार कराओ, डॉक्टर पास जाओ। तो वो कहती थी कि मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास, ठीक हो जाएगा बोलते थे। लेकिन पेन एक दिन तो बहुत काना मेरे साथ, उसने आंसू वहां निकाला, रोई और क्या कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने किया ठीक है, तो उपचार के लिए प्रार्थना करूं वहां मालिक से, तो हाँ कर दीजिए बोले। तो मैंने यहाँ फोन किया आश्रम में, सुबह 8 बजे कितना मैंने फोन किए और वो प्रार्थना लिखवाए कि मेरी पत्नी ने नामदान ले चुके हैं और उसका बैक बोन में पेन है, कि गुरु जी को ये मेरा प्रार्थना कर दीजिए कि वो कैसे ठीक होगा। तो जवाब में मिला ठीक हो जाएगा, तो वो जवाब मेरी पत्नी वही थी, वो भी सुनी 8 बजे शाम को। तो मैंने उसी वक्त परमात्मा के आगे जाकर के, हे मालिक इनको अगर पिन होता है तो मुझे भी कष्ट होता है, परमात्मा इन्हें जो गलती किया होगा वो अपना उसको माफ कर दीजिए मालिक, और मैं एक इनके नाम से जो दिला दूंगा और ये संकल्प करता हूं इनको ठीक कर दीजिए मालिक, मैंने प्रार्थना की। वो करते ही 15-20 मिनट में वो आपने ही आप बोलती है कि मेरा पेन तो ठीक हो रहा है। तो फिर सुबह जब उठी तब बोल अब क्या है, बिल्कुल ठीक हूं। उस रोज से यानी कि अभी एक डेढ़ महीने हो चुके हैं, उस रोज से अभी तक उनको ये पेन चला गया, वो चमत्कार एक पैसा नहीं लगा। और फिलहाल 7 हफ्ते आगारी मैं स्कूल जब चलता था, एक दिन गया अपने मिर्चिया, पड़ता है मेरे घर मिर्चिया से कंचनपुर तक जाने में लगता है मुझे 2 घंटा बस में, तो 2 घंटा को सफर मैंने तय कर लिया। वो दिन था शनिवार था, सैटरडे विदा का दिन, छुट्टी का दिन, तो मैं वो वहां उतर गए बस से, और फिर दूसरा गाड़ी चेंज करना पड़ता है, तो मेरा दूसरी गाड़ी आने में कुछ लेट था, तो मैंने यहाँ 15-20 मिनट आधा घंटा रेस्ट कर लेता हूँ, वैसे वहां रुके तो 10 मिनट ही रुके तो मेरा घर से फोन आया। मैंने देखा फोन कहाँ आया है, फोन आया उठाए तो पत्नी बोली कि लड़के को हाथ टूट गया, क्या है कि उस दिन नेपाल में छुट्टी होता है, शनिवार को छुट्टी था, विद्यार्थी था वो, स्कूल वो नहीं गए थे, क्रिकेट खेलने गए थे, जबकि वो भी सतनाम नाम ले चुका है, दूसरा नाम ले चुका है और कभी कभी खेल लेते हैं, तो क्रिकेट खेलते थे, कीपिंग करने समय में ऐसे गिर गए और ये लेफ्ट हैंड का यहां पर ये टूट गया। वो बोला तो मैंने कहा वो कहाँ है, तो डॉक्टर के पास है, एक्सरे हो रहा है, तो मैंने कहा मैं आऊं, तो वो घबरा गई, तो मैंने समझा कि जब हम यहां से पहाड़ चले जाओगे फिर स्कूल चले जाओगे तो फिर आने में टाइम लगेगा, अभी रास्ता में हूं चला जाता हूं। उसी वक्त मैंने मालिक को समझा, हे मालिक वो बच्चा है, कुछ गलती हो गया होगा कि क्या हुआ, परमात्मा इसे किए और सत्संग हम ऑन किए, मोबाइल में सत्संग था, सत्संग ऑन किए, बस में बैठे फिर घर को रिटर्न चले, सत्संग बहुत प्यार से सुने और प्रार्थना करते रहे मालिक को। जब आते हैं घर तो मेरा बच्चा जिसका हाथ टूटा था अमृत का, वो कुर्सी पर ऐसे आराम से बैठा है, तो मैंने उसको हाथ देखा क्या हुआ, हाथ टूट गया, तो हड्डी जब टूटता है तो स्वेलिंग होता है, वो आम लोग जानते हैं, वो फूलता है हाथ, इतना ये मोटा होता है। तो मेरे पत्नी को मैंने पूछा था पहले उसका हाथ कैसे मोटा हो रहा है, तो हाँ मोटा हो रहा है, तो बिल्कुल वो फिक्स है कि हड्डी टूट गया, ठीक है। तो मैं जब वो 2 घंटे लगा कर फिर रिटर्न आए तो बच्चा को देखे बैठ रहा है वो, उसका उम्र है अभी 14 साल का अमृत, तो उसके बोले कि ये क्या हो रहा है स्वेलिंग तुम्हारा कितना हो रहा है, तो वो बोले कि पापा ये बड़े बढ़ रहा था, अभी कुछ देर से मेरा ये स्वेलिंग घट रहा है, यानी कि ये जितना मोटा था वो घट रहा है, और पेन क्या है, पेन नहीं हो रहा है। वो बहुत हंस रहा था आराम से, बिल्कुल पेन नहीं था, और जो शुरू में मोटा हुआ था हाथ कुछ घंटा बाद वो अपने आप कम होने लगा, कम हो गया। तो डॉक्टर ने दिए वो एक्सरे, तो वहां विष्णुदेव शाह डॉक्टर है, हड्डी बिहार का अच्छा डॉक्टर है वो, तो वो उस दिन नहीं थे वहां पर, वो कहीं गए थे, इंडिया गए थे, और उनका और स्टाफ सब एक्सरे किए थे, तो वो बोले कि डॉक्टर सुबह कल आइएगा, हाँ आप डॉक्टर कल आएंगे या शाम आएंगे आपको कम हो जाएगा। मैं ठीक है, तो शाम को मैंने फिर प्रार्थना की है आश्रम में, उसी रोज शाम में मैंने प्रार्थना की आश्रम में। प्रार्थना में क्या क्या कि अमृत का नाम खंडित है या क्या है, और उसका हाथ टूट गया है वो कैसे ठीक होगा, परमात्मा से मेरा प्रार्थना है ये, तो प्रार्थना अर्जी कर दीजिए। तो यहाँ पर जो भगत जी ने बोले थे वो बोले आपका 842 नंबर हुआ 842, आप कल फोन करना, टाइम दिए मैं फोन किए, तो यहां से जवाब था मालिक का, उसका नाम ठीक है और ठीक हो जाएगा हाथ। तो मैं बिल्कुल ठीक, तो उस समय तक यानी कि जब मैं यहां पर किए वो प्रार्थना फर्स्ट रोज, वो बच्चा आराम से सोया, कोई पेन नहीं था, और वहां पर लोग कहेगा कि इसको हाथ बैंडेज नहीं किया, तो मेरा बच्चा बोलता था कि पापा बैंडेज नहीं कराना है ठीक हो जाएगा, तो मैंने बोला हाथी टूट गया है तो करवा लो, कोई बड़ा बात नहीं है, तो मालिक पर विश्वास है, ये है वो तो कर देंगे सब, बिल्कुल ठीक है, ठीक है करवा लो। तो डॉक्टर ने बैंडेज किया, 7 हफ्ते का बैंडेज खोला, और एक हाथ से भी वो कभी कभी खेले थे क्रिकेट लुक लुक करके, हमेशा स्कूल जब जाते थे बच्चे सबके पास खेले थे, अभी वो बिल्कुल ठीक है, उसको टाइम पुगने पर बैंडेज खोल दिया, कोई इतने है। तो इसमें जब हड्डी टूटा तो स्वेलिंग होना था, और वो स्वेलिंग हो रहा था, जब सत्संग स्टार्टिंग किए, बच्चा को सत्संग सुनाए कि तुम भी सुनो, वो प्रेम से सुना, मंत्र जाप था, मंत्र जाप करो, उसको मैं बोला मंत्र जाप करो तुम नहीं कर रहे हो ऐसे, तो वो मंत्र जाप ही स्टार्टिंग किया, कुछ ही घंटा में पूरा उसका हाथ मोटा वाला कम हो गया और पेन दूर हो गया, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। आप
भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
भक्त समाज को तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जैसे मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि भक्ति क्या होता है, भक्ति करना होता है नहीं, और मैं कुछ विरोध भी कर देते थे, ऐसे पूजा पाठ को मैं मानते थे नहीं। जब परमात्मा का मर्जी हुआ तो अब पता चला कि भक्ति बिना तो नर खर एक है, बोलते हैं से वो नर खर, खर मीन्स गधा, तो गधा और मानव में कोई अंतर नहीं है भक्ति भी, तो इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। फिर ठीक है, भक्ति करना तो है, वो भी सही भक्ति नहीं होगा तो वो कोई काम नहीं। तो सही भक्ति क्या है उसको हम टेस्ट कर ले। काय अभी तो साक्षर हुए बहुत सारे लोग, और हम जो क्रिया करते हैं उसको टेस्ट कर ले, वो क्रिया अच्छा है या बुरा है, टेस्ट करने का हमारा वो माध्यम है शास्त्र। शास्त्र में से बहुत सा शास्त्र है, तो जो सुप्रीम शास्त्र सब स्वीकारा है, अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं प्रश्न उठाया उसमें, चार वेद, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, गीता और ये सभी सुप्रीम तो हो, चार वेद मुख्य है, और वो वेद के अनुसार अगर आप भक्ति कर रहे हो ठीक है, अगर वेद के अनुसार भक्ति नहीं है तो आप अपना मान बराई घमंड वो सब त्याग दे। काहे अभी सारे जितने लोग शिक्षित है वो भी, नहीं शिक्षित है वो भी अपने बच्चा को वो बोलते हैं कि बच्चा घमंड नहीं करना, वो घमंड तो कैंसर होता है, वो तुम्हें दुख देगा। तो जब आप अपने बच्चा को कहते हो कि तुम घमंड नहीं करना, तो आप काहे घमंड कर रहे हो, आप घमंड कर रहे हो कि रामपाल ऐसे है वैसे है, ऐसे वैसे छोड़ दो, अगरम बगरम छोड़ दो, आइए आ करके आप यहाँ पर ठीक है, नाम दान लेना आपका मर्जी है, आप आइए एक बार अपना अभिमान छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए बिल्कुल, आप जो पोस्ट में हो उसको भी कुछ देर के लिए भूल जाइए, आइए सत्संग में, और सत्संग में आने के बाद आपको पता चलेगा कि भक्ति करनी है या नहीं, और भक्ति किसको कहता है, और भक्ति कैसे होनी चाहिए, कैसे हमारा मोक्ष होगा। अभी हम मानव जीवन जो भोग रहे हैं, फिर ये हमारा जीवन कितना दिन का है, कितना वर्ष का है, ये कष्ट में काहे है, और हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, और यहां पृथ्वी में आए हैं अभी मानव बन करके, फिर आगे क्या क्या बनेंगे, और ये मानव समय वो आपको जीवन है, इस जीवन में आपको सुख दुख मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, आप सुखी होते हो तो आप समझते हो कि बिल्कुल मैं सुखी रहूंगा, वो बात नहीं है, आप देखिए। और जब आपको दुख आता है तो आप कहते हैं हे भगवान, हाँ, तो वही आप जो हे भगवान पुकारते हैं दुख के समय में, तो वो भगवान असल कौन है, उनको आप दुख आने से पहले समझ ले, और आ करके यहाँ आइए, आपको पता चलेगा ये 21 ब्रह्मांड तो नहीं, असंख्य ब्रह्मांड का ऑल कंट्रोलर संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर देव स्वयं है, कबीर साहेब संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। और अगर संत रामपाल जी महाराज परमात्मा, हम तो परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा हमारा वे, आप ठीक है, आप परमात्मा नहीं मानते हो तो आप संत रामपाल जी महाराज कहते हो ठीक है, तो आपको भाषा में संत रामपाल जी महाराज अगर मानव है तो इस पृथ्वी के और मानव में और आपके दृष्टि में जो मानव मान रहा है संत रामपाल जी महाराज को, इनमें क्या डिफरेंस है आप देख लो, वो डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि ये 100% अल्लाह है, परमात्मा कबीर परमेश्वर है, अर्थात सुप्रीम गॉड है। इन्हीं को शरण में आने से पूर्ण मोक्ष होगा। और जितना भक्त समाज यहां आए हैं, PhD है कोई, हम देख रहे हैं, और एकदम विद्वान सब है, सेठ है, कार में बैठ करके आ रहे हैं, तो क्या वो सब मूर्ख होगा? आप एक बार थिंकिंग करो, और मान बराई अभिमान सबको त्याग करके मेरा प्रार्थना है, आप आश्रम आइए, वो आश्रम है इंडिया में पड़ता है भारत में, उसका नाम है सतलोक आश्रम, जिला हिसार बरवाला, वहां आकर के आप सत्संग सुनिए और यहाँ नाम दान लीजिए और अपना ये मनुष्य जीवन का कल्याण करवाए।
जी धन्यवाद सर आपका, बहुत